نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے. ہمارا آج کا سبق حدیث نمبر 240 کتاب الصلاۃ کا اگلا سیشن ہے اور حدیث نمبر ہے 240. اس میں جو ٹاپک ہے آج ہمارے پاس ما یستر من العورتی, ماں میں نے جو یستر چھپایا جاتا ہے من العورتی چھپائے جانے والی چیزوں میں, یعنی جسم میں جو قابل ستر حصے ہیں, یعنی جس کو آپ پرائیویٹ پارٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ کے قریب کی جگہ, تو نماز میں ان کے بارے میں کیا حکم ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام جس غربت اور مفلسی میں زندگیاں بسر کرتے تھے اس کی عملی تصویریں ہمیں ان احادیث کو پڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ بعض دفعہ جسم پر کپڑا بھی پورا نہیں ہوتا تھا. بعض دفعہ ایسے لگتا تھا کہ پورا کپڑا پہنے بغیر نماز پڑھیں گے تو پتہ نہیں ہماری نمازیں قبول ہوں گی کہ نہیں. اسی سے ملتی ہوئی بات اس حدیث میں, عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اشتمال السماء وان يحتج الرجل من في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا, منع کیا, نہا کا معنی کے منع کرنا یعنی روکا, پروہیبیٹڈ کے معنوں میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے, ان اشتمال السما, اشتمال السما کہتے ہیں اتنے زور سے کپڑے کو کس کے باندھنا کہ ہاتھ بھی نہ کھلے. دیکھیں لفظ اجتمال میں کیا, شمالا, شمال, شمل, اور سما وہی لفظ ہے جس کو آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں, سمن بکمن امجن فہم لا یرجون, تو سم کہتے ہیں نا گونگے کو, بہرے کو. تو اجتمال سما کہہ کے اتنی سخت بکل ماری جائے کپڑے کی کہ ہاتھ بھی نہ نکلے, یعنی بالکل بچے کو جیسے بعض مائیں باندھ کے ٹائی اپ کر دیتی ہیں نا, تو آپ نے منع کیا کہ اتنی زیادہ سخت بکل نہ مارا کرو. کیوں, ابھی دیکھتے ہیں. اور دوسری بات, وَأَن يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ, اور آپ نے اس سے بھی منع کیا کہ گوٹھ مار کر ایک کپڑے میں بیٹھنا, یعنی اس جسم پر بس ایک چادر ہے تو گوٹھ مارنا کیسا ہے کہ جس میں ٹانگیں کھل جاتی, چوکڑی مارنا نہیں کہتے ہم اپنے ان پہ, یعنی ایسی کیفیت کہ جب وہ اٹھے گا تو اس کا پرائیویٹ پارٹ دکھے گا. منع کیا, یعنی بعض دفعہ صحابہ کے پاس اتنا چھوٹا کپڑا ہوتا تھا کہ اس کو باندھ کر اس طرح سے بیٹھنے کا حکم ہے کہ جب اٹھیں تو پرائیویٹ پارٹ نہ کھلیں. آپ سوچیے, ہم اپنے اوپر لے کے سوچیں, ہمارے تو بچوں کا بھی یہ حال نہیں ہے, بڑوں کی تو بات چھوڑیے, ہمارے بچوں کے پاس اتنے اتنے کپڑے ہیں تو کہاں پھر ان کا حال تھا. پھر فرمایا لیس علی فرجہ منہ شیء, کہ اس کی شرم گاہ پر کچھ بھی نہ رہے. یعنی اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کا کپڑا باندھنا کہ جس سے ستر کا کھلنا اس کا اندیشہ ہو تو اس کو نہ کیجیے. اور گوٹھ مار کر بیٹھنا کیا, دونوں سیریں زمین پر رکھ کر اپنی پنڈلیاں کھڑی کر کے بیٹھنا. بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا ایسے, جیسے زمین پہ بیٹھے تو گھٹنے کھڑے کر دیتے ہیں, بالکل. ایک تو چوکٹی مارنا ہے نا, چوکٹی مارنے کو سوچیے کہ ٹانگیں سیدھی کھڑی کر لی جاتی ہیں, اور اکثر بوڑھے لوگ ٹیک لگا کے تو پھر آگے بازو کر کے تو اس طرح ہاتھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی آپ کے ذہن میں تصور میں آ رہا ہوگا. تو اس سے منع کیا کیونکہ اس میں ستر کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو کیا پتہ چلا, اس میں ہمارے لیے عمل کی بات ہے کہ ستر چھپائے جانے کی جگہ اور اس کو بغیر وجہ کے کھولنا نہیں چاہیے. اگلی روایت کیا ہے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قالا فرمایا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کس چیز سے, پہلی چیز ان بیعتینی, دو قسم کی خرید و فروخت سے, یعنی بیع کہتے ہیں خرید و فروخت, ٹریڈنگ جو بھی ہے, اور بیعتین دو طرح کی چیزوں سے منع کیا کہ اس طرح کی ٹریڈنگ نہ کرو. پہلی کیا ہے, ان اللماسی, لماس, ایک کیا ہے چھونے سے, اور دوسری کیا ہے ون نبازی, اور دوسری جو محض پھینکنے سے پختہ ہو جائے, اور تیسری وَأَن يَشْتَمِلَ السَّمَّ, اور یہ کہ زور سے بکل ماری جائے, یعنی اشتمال سمہ سے بھی منع کیا, اور وَأَن يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ, اور اس بات سے بھی منع کیا کہ انسان ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھے. اب آپ دیکھیے ہمارا یہ ٹاپک نماز کا چل رہا ہے نا, تو یہ جو بیع کی دو قسمیں اس کو ابھی ہم نہیں دیکھتے, لیکن आज भी जो लोग कारोबार करते हैं उनको ऐसी चीज़ों से बचना है। इंशाल्लाह जब इसी किताब का किताबुल बियू आएगा तो लिमास और निवास क्या चीज़ें होती हैं इसको हम वहाँ देखेंगे। अभी कहूँगी तो बात डिस्ट्रैक्शन में चली जाएगी। यहाँ वही बात है जो ऊपर अली हदीस में, नंबर एक, यश तमील सम्मा इश्तमाले सम्मा, यानी ऐसे घुटने जोड़ कर खड़े कर कर बैठ जाना कि उठने में शर्मगाह के खुलने का ख़तरा हो। और दूसरा, यह तबीयर रजुलू फी सौबे माहद, एक कपड़े में भी इंसान नमाज ना पढ़े। अच्छा, अब है ही एक तो क्या करें, ये भी एक सवाल आता है। तो फिर पिछली हदीसों में तुमने पढ़ा था ना कि फिर एक जब कपड़ा और इतना बड़ा है वसत है तो फिर उसको इस तरह से जैसे वो साड़ी का बुकल मारते हैं तो कंधों पे डाल ले, यानी आम हालात में मर्द के कंधे नमाज में कवर्ड होने चाहिए, ये एक हुक्म है। बाज़ दफ़ा बाज़ मर्द घर में नमाज पढ़ते हैं तो बनियान पहनते हैं और वो बनियान बिल्कुल स्ट्रिप्स वाली होती है तो वो बेहतर नहीं होती। अगर बनियान पहनते हैं तो दो चीज़ें देख लें, एक तो यह है कि उसके कंधे ढके हों यानी स्लीव्स वाली हो थोड़ी सी, और दूसरी है कि वो इतनी लंबी हो कि नीचे अगर कोई ऐसी पैंट पहनी है या टाइट किस्म का ट्राउजर है तो प्राइवेट पार्ट नुमाया ना हो। जैसे औरत के जिस्म के हिस्सों को छुपाना है और बहुत तंग नहीं पहनना, सी थ्रू नहीं पहनना, सेम यही चीज़ मर्दों के लिए भी है। आप इमेजिनेशन में लाएं कि एक मर्द है जो नमाज पढ़ जो जीन्स पहनता है और जीन्स भी ऐसी कि बिल्कुल जिस्म पे सिली हुई है, अब ऊपर छोटी सी टी शर्ट पहन ली जिससे हिप्स भी कवर्ड नहीं है तो उसमें नमाज नहीं होगी। जिस तरह औरत रुकू में सजदे में जाती है तो उसकी बैक खुलती है तो मर्द की भी खुलती है। तो इतनी तंग ट्राउजर जिसमें जिस्म के पार्ट दिखें या इतनी स्ट्रेची है, जैसे बाज लोग जॉगिंग ट्रैकिंग सूट जॉगिंग वाला सूट है कोई स्ट्रेची है कि बिल्कुल जिस्म पे सिला हुआ दिखे, उसमें नमाज नहीं होती। अगर मर्द ने कोई ऐसी चीज़ पहनी तो फिर उसको कम से कम इतनी लंबी शर्ट या कोई ट्राउजर, ऐसी लंबी शर्ट या बुनियान पहनी होगी जो कम से कम उसकी थाइस को कवर कर ले। और यहाँ से इसी में आप अपने बच्चों को भी से ट्रेनिंग दें। देखिए हया की बात है ना, हम अक्सर औरतों के साथ हया की बात करते हैं, मर्दों को नहीं सिखाते, इससे फिर आगे जाके बहुत खराबियां आती हैं। एक मर्द बाजारों में गलियों में फिरे और उसका जिस्म खुले तो क्या उससे फितना नहीं आएगा? अगर एक औरत के पहन औरत को देखने से मर्द उसकी तरफ रागिब होते हैं तो मर्द को देखने से दूसरे मर्द भी देखेंगे और औरतों की भी नजर पड़ेगी। तो लिहाजा इस तरह की काम नहीं करने चाहिए। फिर अगली रिवायत देखते हैं, अनहु रदी अल्लाह अनहु काल वासनी अभी अबू बकरिन फी तिलकल हज्जती। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि उन्होंने मुझे अबू बकर से सॉरी यानी हज़रत अबू हुरैरा ये रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया, हज में कुर्बानी के दिन मनादी करने वालों के साथ रवाना किया। देखिएगा इसको, बासनी भेजा मुझको मबूस किया अबू बकर ने, अबू बकर ने फी तिलकल हज्जती इस हज में मुअज्जनीना यौम नहर, दो मनादी करने वाले, एक होता है मुअज्जिन ठीक है एक हुआ ना, तो मुअज्जिनीन मुअज्ज नहीं है बल्कि मुअज्जिनीन दो भेजने वालों के साथ मुझे भी भेज दिया। क्यों भेजा? नुअज्जिनु बिमना बिमिना, ताकि हम मिना में ये ऐलान कर दें। क्या ऐलान कर दें? अला ला यहुज बादल आमी मुशरिकुन, के आज इस साल के बाद कोई मुशरिक हज नहीं करेगा। जो लोग तफसीर पढ़ चुके हैं वो समझ गए होंगे, बरातुम मिनल्लाही सूरह तौबा की इब्तदाई आयतें। जो लोग नए हैं उनके लिए चंद जुमले, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मबूस हुए, वहाँ पहले से खाना काबा मौजूद था जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर के नाम पे बनाया था और वहाँ तौहीद ही उसकी बुनियाद थी। लेकिन वक्त के साथ साथ मुशरिकीन मक्का में इतना जवाल आ गया था कि उन्होंने उस घर को बुतों से भर दिया था और उस घर में इतने बुत थे कि मुसलमान भी वहीं नमाज पढ़ते थे, मुशरिक भी वहीं आके अपनी इबादत करते थे। वहाँ तो आपने कुछ नहीं किया, खामोश रहे, अपनी इबादत जैसे भी करते थे। लेकिन जब हिजरत के बाद मक्का से आप निकले मदीना, अब मदीना में जाकर आप थोड़ा सा इस्टेब्लिश हो चुके थे, मदीना दुनिया में पहली इस्लामिक रियासत है जो इस्लाम के नाम पे बनी, वहाँ जाने से फिर आपका थोड़े सा जब आप थोड़े से स्ट्रांग हुए और फिर कुछ मुख्तलिफ हालात से गुजरने के बाद सन 8 हिजरी आ गया जिसमें मक्का फतह हो गया। वो कैसे हुआ ये एक सीरा कोर्स में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन बहरहाल यह कि मक्का फतह हो गया 8 हिजरी था। अब क्वेश्चन क्या था कि अब मक्का पर मुसलमानों का कब्जा है, खाना काबा उनके अंडर आ गया, अब क्या किया जाए? बदस्तूर वही तरीका था जो उस वक़्त तक चल रहा था, यानी आप देखिए तकरीबन 13 और 8 21 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फ्रिक्शन नहीं पैदा किया। हाँ, जब मक्का फतह हुआ तो आपने अपने हाथों से फिर वहां रखे हुए बुतों को तो तोड़ दिया, और बाकी साहबा को भेजा कि मक्का के गिर्दो गिर्दो नवाह की जो बस्तियां हैं जहां भी, वहां कोई बुत ना नजर आए। अब ये तो पाक हो गया। क्वेश्चन क्या उठा कि उसके फौरन बाद जब अगले साल सन 9 हिजरी का हज का मौसम आया, तो मक्का वाले ये मुशरिक जो इर्द गिर्द थे, जैसे अब लोग दुनिया भर से वहां जाते हैं, वहां तब भी जाते थे, अब ये क्वेश्चन था कि कैसे जाएं, क्योंकि ये तो अब मुस्लिम टेरिटरी में बदल गया। लिहाजा उससे पहले सन 9 हिजरी जब आया, हज का मौसम था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो अबू बकर सिद्दीक को भेजा और फिर उनके पीछे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को भेजा, क्योंकि कुरैशी थे हजरत अली, रिश्तेदार भी थे और मक्का में ज्यादा लोग उनके रिलेटिव थे, तो आपको एहतमाल था कि कहीं अबू बकर की बात पे कोई मसला ना खड़ा कर दें तो साथ इनके खानदान का एक शख्स भी भेज दें। ये उस मौके की बात है। जो इतनी लंबी बात सुनी है, इसका इसमें से अमल की बात क्या कि हमारा इस्लाम किस चीज से फैलता है, हम दूसरे के साथ टकराव की पोजीशन ना इख्तियार करें। आप देखिए कि वहां तो एक तरफ मुशरिक और एक तरफ मुसलमान थे, कुफर और शिर्क और इस्लाम की जंग है। आज हमारे मुसलमानों में दोनों खुद को मुसलमान कहने वाले, लेकिन मसलक के फर्क पे, फिक के फर्क पे अपनी मस्जिदों में दूसरों को आने नहीं देते, दूसरे आए उनकी मस्जिद में अपने तरीके से नमाज नहीं पढ़ सकता। तो ये बात सीखने की है, सब्र, बर्दाश्त, हौसला, दूसरे को बर्दाश्त करें। असल खूबसूरती इस्लाम की यह है कि हक पे अमल करें, दलाइल को बुनियाद बनाएं, कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, जो बात समझ आती है, रह के दूसरे मसलक के लोग, दूसरे उलमाए कराम जो दूसरे फिक को देखते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करें। इस्लाम कभी भी इस तरह नहीं चाहता कि आप उठ के दूसरों की मस्जिदों में जाकर हमले कर दें और करवा दें। तो यहाँ से अबू हुरैरा का ये अमल पता चल रहा है कि अबू हुरैरा भी साथ थे। जहर के उस दौर में ये तो नहीं था कि एक पेलटॉक में मैसेज दिया सबको पहुंच गया, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज दिया सबको पहुंच गया, वहाँ वन ऑन वन बेस पे करना पड़ता था। कुछ लोगों ने एक जगह अरफात में खड़े होकर ऐलान किया होगा, कुछ ने दूसरे, कुछ ने मक्का के पास, तो जहाँ जहाँ बात हो सकी वो की। तो अबू हुरैरा कह रहे हैं कि मेरे साथ एक और भी थे, तो हमने जाके मीना में ये ऐलान करना था कि आज के बाद यहाँ कोई मुशरिक नहीं आएगा। ये भी तो इस्लाम की रियायत है ना, आने दिया। हम होते पहले ही खबर डाल देते, खबरदार आज के बाद ना आना मक्का में, अब इस कुफर नहीं चलता। और आप पढ़ें कुरान में कि जब वो ऐलान हुआ तो साथ फिर 4 महीने की मोहलत भी दे दी कि इन 4 महीनों में जो वादे, 4 महीने तक आ लो, सोचो बैठो, हत्ता यस्मा कलामुल्ला, आना चाहो मोस्ट वेलकम, आओ हम तुम्हें पढ़ाएंगे, हम तुम्हें इस्लाम सिखाएंगे, उसके बाद या तो मुसलमान हो जाओ या फिर आज तक तुम मक्का में नहीं आओगे या क़यामत तक मक्का में नहीं आओगे। दूसरी सूरत क्या थी कि आपने उनको ये भी बात कह दी कि तुम लोग आज यहाँ से जा रहे हो, यानी तुम्हें आज यहाँ आने की इजाज़त नहीं मिल रही और तुम फौरन चले जाओ और तुम्हें बहुत कुछ कह दिया जाएगा नहीं। अच्छा, एक सूरत ये आपके जहन में आ सकती है कि ना ही बेचारों को रोका जाता, आते रहते वो भी उधर ही। एक क्वेश्चन आता ना, अच्छा जब इतना जो सबर 21 साल किया था तो फिर एक कोना बना देते कि मुशरिक भी आके यहाँ इबादत करें, तो मुझे बताइए कि इसका नतीजा क्या निकलता। इस हज और उमरे के ट्रिप में मैंने इस चीज़ को बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि जितना इस वक्त पूरी दुनिया वेस्टर्न कल्चर के अंडर है और मीडिया ने सहूलत पैदा कर दी, वो तो सऊदी अरब के भी घर घर में चलता होगा, लेकिन मक्का और मदीना, आप देखिए कि हम जितने भी दिन वहाँ रहे, जिस दिन हम आने वाले थे तो मैंने अपने साथी से कहा कि आप फील करें मक्का में या मदीना में, जब से हम इधर आए हमने एक भी मुशरिक नहीं देखा। ये कितनी बड़ी एक अचीवमेंट है, सब एक नज़रिए के लोग, सब कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून पे अमल करते हुए। फिर मैंने कहा कि देखें कि जब से हम इधर आके बैठे हुए चले मक्का से मदीना, कोई एक औरत ऐसी गंदे हुलिये में नहीं देखी कि देख के नजरें गंदी हो जाएं। राह चलते होती है ना गंदी, जितना मर्जी बचना चाहें किसी के टाइट ड्रेस, किसी की पैंट्स, किसी के स्ट्रेची कपड़ों को देख के तबीयत पे बोझ आता है ना, वह नहीं आता। यही वजह आप वहां अपने मर्दों के साथ जब जाएंगी और अगर बेटे हैं या कोई भी, आप उन पर उनके रवैयों में फर्क देखेंगे। माहौल का असर होता है, नजरें गंदी होती हैं, सोच गंदी होती है, उससे गुफ्तगू भी गंदी होती है। तो मुझे इतना वो सोच के अच्छा लगा कि यहां कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता। अल्लाह ने उस एक खित्ते को आप कह लीजिए कि सारी दुनिया के कल्चर से आजाद कर दिया कि यहां आओ तो तुम्हें सिर्फ इस्लामिज्म दिखे, फिर वहां कोई इस्लाम फोबिया का नाम नहीं बोलेगा, सब कोई एक धुन लगी है, सब एक काम पे चल रहे हैं। और फिर एक और चीज जो मेरी फीलिंग्स थी, अब मौका आया तो आपसे शेयर कर रही हूं, एक और चीज जो देखी वो क्या है, कितने लोग होते हैं वहां, आप देखिए हजारों क्या लाखों की तादाद में भी तवाफ में, चलें आज के हालात में बात कर लें कि एक वक्त में तवाफ करने वाले 1 लाख लोग हैं कमोबेश, इससे भी ज्यादा ही होते होंगे, लेकिन इतने तो हम लगा लेते हैं। ये बताइए, कभी किसी ने कोई खबर सुनी, किसी मर्द ने औरत को छेड़ा, चुटकी काटी, किसी की नजर से नजर मिली, कुछ भी नहीं होता। ये अल्लाह की एक हिकमत है। मैंने एक स्कॉलर थे तो उनसे ये बात कही कि क्यों ना यहाँ औरतों की क्यों लग जाए मर्दों की कुछ लाइनें हों और एक रोप उसके इर्द गिर्द घूमते जाएं, 7 चक्कर भी हो जाएं, एक दफा उसमें घुस जाएं तो फिर आप चलते जाएं। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं हम कर सकते, क्योंकि जिस दिन से ये घर बना है तब से लेके आज तक अल्लाह का यही तरीका है कि यहाँ औरत मर्द साथ रहे। तो इसकी हिकमत क्या है? मैनेजमेंट सिखाई है कि जिंदगी में जब कभी किसी जगह औरत और मर्दों का इख्तलात हो, एयरपोर्ट्स पे होगा, जहाज़ों में बैठेंगे तो होगा, ट्रेन स्टेशंस पे होगा, आप ना भी बाजारों में जाके मर्दों से बात करें, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इंटरेक्शन ना हो? तो फिर सिखाया गया कि औरतें और मर्द कैसे रहें। तो ये एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हिकमत है कि वहां जाकर नजरों की भी हिफाजत होती है और सोचों की भी हिफाजत होती है। तो अल्लाह ने उस इलाके को किसी मुशरिक के ना आने का हुक्म देकर मुसलमानों को कम अज कम जमीन का एक टुकड़ा तो दे दिया कि जहां अल्लाह के हुक्मों पे अमल करने की बरकतें लोग देखते हैं। और ये मैं सोचती हूँ अक्सर कि अल्लाह ने ये सारी सोचें ही है इन दिनों ही की, और वो कह के अल्लाह ने ये लगा कर ना पाबंदी के यहाँ मुशरिक नहीं आ सकता, हम मुसलमानों पर भी बड़ा एहसान किया। अगर यहाँ मुशरिक आ सकते, मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ, उन्होंने इधर आकर और यहाँ से जो आइडियाज लेने थे और जो वहाँ डिसिप्लिन और कायम कर देना था, हो सकता है कि हम मुसलमानों को भारी ना आती। जब वो तस्वीरों में देखते होंगे, जब वीडियोस में देखते हैं, दिल में उनके तो जरूर आता होगा, ऐसे लगता है इंसानों का एक गिरोह है, पानी का सैलाब, एक ऐसे लगता है कि पानी में तैर रहे हैं लोग, इतने लोग होते हैं। समटाइम यकीन करें कि ऊपर से जब आप नीचे देखते हैं वो जो टेम्परेरी रिंग्स आजकल बने हुए, ऐसे फील होता है कि पानी है नीचे और ये सब यूं तैर रहे हैं, जैसे आप फीलिंग आती है ना पानी में सब खड़े हैं और सब यूं हाथ खड़े, इस तरह यूं एक हज में चल रहे होते हैं यूं सब। कि वो एक साथी की बात कि यहां आके तो कुछ कदम ना भी उठाओ, पीछों नहीं धक्के करके तवाफ करा देना आपका, असल मेरा तवाफ शुरू होगा जब मैंने यहां से अपने घर जाना है, मेरा असल तवाफ वहां शुरू होना है कि मैंने सोसाइटी से अपोजिट जिंदगी बसर करना चाहनी है तो लोगों ने मुझे फिर पुश करना है, फिर वो रिजिस्ट करते हैं। तो बहरहाल सीखने वालों के लिए बातें बहुत सारी हैं, ना सीखने वाले तो इतनी देर में एक तवाफ भी पूरा कर लेते हैं। तो दूसरा हुक्म क्या था? यतूफ बिल, और एक तो क्या कि हज नहीं करेंगे और दूसरा यतूफ बिल बैती उरयानन, उरयानन कोई मुशरिक हज भी नहीं करेगा और कोई बरहना होकर तवाफ नहीं करेगा। सूरत अल अराफ में कुरान पाक में ये चीज आती है कि मक्का वाले कपड़ों के बगैर तवाफ करते थे, जिस्म पर औरतें प्राइवेट पार्ट पर चमड़े का एक टुकड़ा रख लेती थी, और जब कोई इनसे पूछता किस बेहयाई की वजह क्या है तो अकल इस्तेमाल करते थे। देखिए अल्लाह के हुक्म में अकल का इस्तेमाल पसंदीदा नहीं है, क्योंकि शैतान वो पहली हस्ती है जिसने अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अकल इस्तेमाल की थी कि ना खैरु मिन, तूने मुझे आग से पैदा किया, इसको तूने मिट्टी से पैदा किया, ठीक है? तो अकल नहीं इस्तेमाल करनी, अकल वो क्या इस्तेमाल करते थे, कहते थे इन कपड़ों में गुनाह करते हैं तो अल्लाह के घर आके ये सब छोड़ के नेचुरल ड्रेस में आ गए। आप बताइए उल्टी खोपड़ी है ना, लेकिन शैतान इस पे लोगों को मुतमईन करता है। तो हज जब मक्का फतह हुआ तो अल्लाह के नबी ने इस पर पाबंदी लगा दी कि आज के बाद कोई नेकेडली तवाफ नहीं करेगा। फिर क्या हुआ? सुम अरदफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयन, फिर इसके बाद अल्लाह के नबी ने हजरत अली को रदीफ बना दिया। अरदफ का लफ्ज क्या है? उर्दू में आप लफ्ज सुनते हैं काफिया और रदीफ, काफिया क्या होता है? पहला मिसरा, तो रदीफ उसके बाद वाला, यानी उसके वजन पे ही होता है ना मोस्टली, जब एक में कहते हैं तो दूसरे में भी उसी का वजन है। तो रदीफ कहते हैं पीछे बैठा हुआ शख्स, घोड़े पे कोई बैठता है तो एक आगे बैठता है ना, तो दूसरा उसके पीछे बैठेगा, वो उसी से लफ्ज अरदफ है, पीछे लगा दिया, जोड़ दिया। यानी कहते हैं कि इसके बाद अल्लाह के नबी ने हजरत अली को ये हुक्म देकर भेजा, क्या कहा? फमरहू, हुक्म दिया युअज़्ज़िना बरातों, के वो ऐलान कर दें बरात का। वही बरात, यानी बरात किसको कहते हैं? हमारे यहाँ बहुत सारी बरातें हैं और हम मखारिज का ख्याल ना रखें तो सारी एक ही हो जाती है। एक तो दुल्हा की बरात आती है जिसके गाने भी होते हैं और जिसके लिए माएँ बहनें बहुत सारी ख्वाब भी देखती हैं कि बरात पे जाना है, बरात के साथ जाना है। एक शबे बरात होती है, जो 15 शाबान को मनाई जाती है, आप मुझे बताएंगे दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं, पहली बारात और दूसरी बारात में क्या फ़र्क है? बारात जो शादी की बारात है वो क्या है? कुछ पता नहीं, बारात का इस्लाम में कोई तस्वुर ही नहीं है। ये तो एक पीछे बुजुर्गों की या पिछले दौर में जब बहुत ज़्यादा चोरियां चकारियां होती थी, तो जब किसी की लड़की को ब्याहने जाते थे तो वापसी पे उसका जहेज उठाना होता था। अब उस वक्त कोई कंटेनर और उस तरह ट्रक्स तो थे नहीं है, तो अपने साथ लड़के वाले कुछ मजदूर ले जाते थे कि वापसी पे हम सामान उठवा के लाएंगे। ये है, आई एम नॉट जोकिंग, ये इसकी हिस्ट्री है। एक तो ये वजह होती थी सामान उठवाते थे, पेटियां, संदूक और जो कोई फर्नीचर होगा। दूसरा ये होता था हिफाजत के लिए लेके जाते थे कि रास्ते में कोई चोर डाकू ना आ जाए, क्योंकि शादी है, कोई जेवर होगा, कुछ कीमती चीजें होंगी। इस तहफ्फुज के लिए लड़के वालों ने अपने साथ कुछ लोगों को ले जाना शुरू हुआ और किया, और आज उसका क्या हाल हो गया कि बारात वालों की कदर ना करें, इज्जत ना करें तो घर बने बने टूट जाते हैं। और बारातियों के बैठने की जगह ये है और गैर बारातियों के बैठने की जगह ये, और आप किसी ऐसी जगह पे बैठ के तो देखें आपको उठा देंगे, कहेंगे उठें ये बारात के लिए, ये दूल्हा के लिए। और मैंने लड़ाइयाँ क्या होती कि घर टूटते देखें, सिर्फ इसलिए कि हम आए और हमें इस्तकबाल ही नहीं अच्छा किया आपने और दिस एंड दैट। तो ये सिर्फ गैर इस्लामी तरीका जिंदगी है। चलिए मुझ दूसरा सवाल ये कि ये शबे बारात जो हम मनाते हैं ये क्या होती है फिर? यानी उस लफ्ज़ को मैं बोल रही हूँ, और अभी आने भी वाली है ना, अभी अल्लाह के हुक्म से शाबान का महीना आएगा। तो ये बताइए कि ये, मैं अक्सर बचपन से सोचती थी कि ये शबे बरात जो दुल्हन की शादी की बरात होती है, तो हम बचपन में क्या सोचते थे, जैसे शादी में खुश होते हैं, फूल जड़ियाँ होती हैं और खुशी होती है, तो ये शबे बरात भी कोई इस तरह की जश्न की रात है जी? आप में से किसी को पता हो कि ये शबे बरात को शबे बरात क्यों कहते हैं? किसी को नहीं पता,
हमने तो बचपन से जो ही
जो
सुना था
सुना वही
पता
कभी
चला
सोचे ही नहीं।
कि उस रात पत्ते झड़ते हैं, मरने
मैं
वाला
उसकी
आता है,
बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ नाम की बात कर रही हूँ इस वक्त।
हर नाम का अलग
कभी
बताते
सोचे ही
रहते
नहीं,
हैं
तो इस साल
बच्चे।
फिर पूछिएगा कि ये शबे बरात क्या होती है? मनाने वालों को नहीं पता, शादियों में दुल्हनों की शादियों से पहले मंगनी हुई हो तो बरातें जाते, वो क्या कहते हैं, शब रात जाती है, कभी ईद जाती है। क्या कर रहे हैं हम सब? मुझे तो ऐसे लगता है सब गुड़िया गुड्डी का खेल खेल रहे हैं, सब अपनी खुशियों में मगन है। अब ये कर लो, और रस्मों कैसे तौक हमने अपने कंधों पर डाले हुए हैं कि अल्लाह के नबी के लिए, कुरान में आता है सूरह अल आराफ में कि अल्लाह ने इस नबी को भेजा जिसने लोगों के बंधन और तौक उनसे उतारे, इसर और इगलाल के बोझ थे लोगों ने अपने ऊपर रस्म और रिवाज के नाम पर डाले थे, नबी सल्लम की सूरत में वो खत्म किए, आज हमने वो सारे डाल लिए, बल्कि औरों के भी डाल लिए जी। आप
बरात है ये, और इसका मतलब है लातालुकी और खत्म कर देना।
तो देखिए, जो जो लोग मनाते हैं या जो इबादत करते हैं उनको भी नहीं पता, लेकिन अगर आप इसको खोल के देखें तो शबे बरात नहीं कहते, वो शबे बरात कहते हैं जो यहाँ है, बेजारी की रात। किसकी किससे बेजारी है? फिर इसके ऊपर वो चंद ज़ईफ़ रिवायात हैं कि इस रात अल्लाह ताला कुछ लोगों को जहन्नुम से बेनियाज कर देता है। आप पढ़ेंगे अभी अखबारों में, देखिएगा आर्टिकल्स आएंगे, तो अभी मैं इस पे कुछ नहीं कहती क्योंकि फिर मौजू ही पलट जाएगा, लेकिन आप भी डराते रहें, और इंशाल्लाह जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में उसमें भी कोशिश करेंगे ये 15 शाबान से पहले वो लेक्चर एक पूरा शाबान की हकीकत और उसकी रियलिटी, तो वो आपको भेज के सुनवा देंगे। आप यहाँ भी ज़रूर सुनिएगा, किसी भी तरह मौका बनेगा इंशाल्लाह आपको सुनाएं, या ये मई के महीने में कहीं ना कहीं हदीस की क्लास में इसी में आपको सुना दें तो ज़्यादा अच्छा नहीं, सब मिलके सुन ले। तो ये इल्म की बुनियाद पे हो। मैं अपनी जुबान से बोलूँ तो मैं 10 जुमले बोल दूँ, लेकिन मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं है। तो जब आप हदीस की रोशनी, कुरान की आयतों की रोशनी में सुनेंगे तो ज्यादा फायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो कहा कि लोगों को बरात का ऐलान कर दो, यानी बेनियाजी है कि अल्लाह ताला मुशरिकों से बेजार है। काला अबू हुरैरा था, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़ज़ना माना अली फ़ी अहली मीना यौम नखरी, हज़रत अली ने कुर्बानी के दिन हमारे साथ मीना के लोगों में ये ऐलान कर दिया। फिर क्या हुआ, क्या कहा, ला यहुज्जु बादल आमी मुशरिकुन, कि आज इस साल के बाद कोई मुशरिक हज नहीं करेगा, एक बात, और वला यतूफ़ु बिल बैत उरियानुन, और कोई इसके बाद बैतुल्ला का उरिया तवाफ नहीं करेगा। अब यहाँ इमाम बुखारी देखिए तवाफ की हदीस लेके आ गए, पढ़ रहे हैं हम लोग हज नमाज। रिस्वत क्या है कि जब तवाफ में सतर लाजमी है, तवाफ में कपड़े पूरे होने चाहिए, तो नमाज तो फर्ज है, बात वाज़े। तवाफ तो सुन्नत है, करें ना करें आपको अजर तो मिलेगा, ना करेंगे तो गुना नहीं, लेकिन नमाज तो छोड़नी नहीं, और नमाज दिन में 5 बार है। तवाफ तो आप जाके कभी वहां करेंगे, नमाज तो आपने हर जगह हर वक्त पढ़नी है, 5 दफा पढ़नी है। तो यहाँ इधर इस हदीस के लाने की हिकमत क्या है कि देखो जब तवाफ में नहीं कर सकते तो तवाफ नहीं कर सकते तो फिर नमाज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नमाज में कपड़ों के बगैर नमाज पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद एक और टॉपिक है, मायूस करु फिल फखीजी। फखिस कहते हैं रान को, थाइस को, ये जो मतलब इंसान के बट्स कह लीजिए, ऐसी जगह के बारे में क्या हुक्म है कि इसको नमाज में छुपाया जाएगा कि नहीं। मतलब मर्दों के लिए ऑफकोर्स, औरतों के लिए तो सर के, औरतों के लिए तो पूरी चादरें ही होती है ना, लेकिन मर्द जब नमाज पढ़े तो क्या अपनी रान को छुपाएगा कि नहीं। यानी मतलब ये कि क्या सिर्फ अंडरवियर पहनकर या कोई पतली सी चीज पहनकर सतर को छुपा के नमाज पढ़ सकता है या फिर पूरी रान को भी छुपाएगा, जैसे ट्राउजर्स हैं या लॉन्ग आप कह लीजिए कि वो क्या बोलते हैं उनको, शॉर्ट्स, शॉर्ट्स की सूरत में। इस सवाल का जवाब इस हदीस से मिलेगा, अन अनस रदी अल्लाह अन्हु, यानी आप कह लें कि क्या मर्द शॉर्ट्स में नमाज पढ़ सकते हैं और क्या अंडरवियर में खाली पढ़ सकते हैं, उसका क्या हुक्म है इस हदीस से इंशाल्लाह हम देखेंगे। अन अनस रदी अल्लाह अन्हु, हजरत अनस से रिवायत है, अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजा खैबरा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजवा किया खैबर का, यानी गजा खैबरा का मतलब कि खैबर की तरफ का रुख किया लड़ाई की नियत से। गजा वही लफ्ज है जिसको गजवा कहते हैं ना, मतलब यह है कि जब खैबर की तरफ आप गए गजवे की नियत से। और खैबर क्या जगह थी, ये आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में गए तो वहां यहूद के 3 कबीले रहते थे, बनु कुरैजा, बनु कैनका और बनु नजीर, तीनों मदीना में मस्जिद नबी के इर्द गिर्द रहते थे। लेकिन इन्होंने कुछ अरसे के बाद ही साजिशें करनी शुरू कर दी, मुसलमानों को सताया। इसी तरह एक मौके पे एक शख्स ने मुसलमान औरत की इज्जत खराब करनी चाही, वो किसी ज्वेलर की दुकान पे आई तो उसका जो कपड़ा था तहमत का उसको पीछे किसी जगह बांध दिया, जब वो अपनी देहान से खड़ी हुई तो उसका तहबंद उतर गया। इसको देखकर वो हंसने लगे। अब ये एक मुसलमान बेटी की इज्जत और उसके ऊपर हरफ था, ये बात मुसलमानों को गैरत में आई दिलाई, इस बात से मुसलमानों को गैरत आई, उन्होंने उस शख्स को मारा, कत्ल हो गया। इस पे हिंद यहूद ने एक बहुत बड़ा फितना उठा दिया, तो उस पे एक जंग हुई थी गजवे बनु नजीर के नाम पे। फिर जब वो वहां इस जंग के नतीजे में ये फैसला होता कि ये मदीना छोड़ दें, ये यहां से निकले तो खैबर में चले गए, मदीना से थोड़ा दूर था लेकिन वहां चले गए, चलो भाई अल्लाह के नबी ने मरवाया तो नहीं, कहा चले जाओ ये खत खाली कर दो। यहां से पता चलता है कि अल्लाह के नबी कोई एक ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं कर सके थे जिससे मुसलमानों की इज्जत और औरतों के लिबास और हिजाब पे जद बढ़े। लेकिन वहां जाकर उन्होंने फिर वही काम शुरू कर दिए, साजिशें की, बल्कि वहां से चू के आगे तबूक के रास्ते और जो ईसाई ममलिकतें थी उस दौर की सुपर पावर्स उनके साथ गठजोड़ शुरू कर दिए। तो लिहाजा फिर सन 7 हिजरी में अल्लाह के नबी ने खैबर की तरफ रुख किया, ये उसका जिक्र है। खैर क्या हुआ, फसल्लैना इंदह सलातल गदाती बी गलसिन, कहते हैं कि जब हम खैबर के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे तो हमने वहां फजर की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ी। गलत सा कहते हैं, बिल्कुल अभी अंधेरा ही था यानी इब्तदाई वक्त अभी सुबह का था, तो हमने वहां नमाज पढ़ ली। फरकीब नबीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रकीब अबू तलहा था, कहते हैं कि अबू हजरत नबी सल्लम भी सवार हुए, अबू तलहा भी सवार हो गए। अबू तलहा कौन थे, किसी को पता इनके बारे में कोई बात? ये हजरत उमे सुलैम के शोहर थे और उमे सुलैम जो थी वो हजरत अनस की माँ थी। तो हजरत अनस पहले शोहर से थे जिनका नाम मालिक था, वो मुल्क शाम में गए और वहां उनका इंतकाल हो गया। उमे सुलैम को रिश्ते आने लगे, खूबसूरत औरत थी, खानदानी थी, वजाहत वाली थी। अबू तलहा ने भी इनको रिश्ता भेजा। उमे सुलैम मुसलमान हो चुकी थी, अबू तलहा काफिर थे। तो इन्होंने फिर उनको बड़ा खूबसूरत अंदाज इख्तियार करके तबलीग की थी कि अबू तलहा तुम बुत को पूजते हो, वो क्या कर सकता है? पूजना है उस किसान को पूज लो जिसने बीज डाला, मेहनत की, दरख्त लगा, कुछ तो किया ना उसने। चलो पूजना है तो उस बढ़ई को यानी कारपेंटर को पूज लो जिसने तराश कर ये बुत बनाया, और इस बुत की तो कोई ताकत नहीं। दलील इतनी मजबूत थी कि अबू तलहा लायक कायल हो गए। तो फिर उमे सुलैम ने कहा कि मैं आपसे निकाह करने पर तैयार हूं और मेरा मेहर आपका इस्लाम होगा, यानी आप मुसलमान हो जाएं तो मैं आपसे हक मेहर नहीं मांगूंगी। ये अबू तलहा थे। आप देखिए इनकी जिंदगियों की कहानियां जब पता होती है ना तो ये आपको अपने फैमिली मेंबर्स लगते हैं, और वरना हमें तो इनके नाम भी समटाइम पढ़ने मुश्किल लगते हैं। तो उमे हजरत अबू तलहा भी वहां आपके साथ ही थे। खैर, और कहते हैं वह अना रदीफ व बीतलहत, انا ردیف ابی طلحہ تھا، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اب ردیف کا معنی سمجھ آ گیا، پیچھے اردف یہی لفظ تھا، یعنی میں آپ کے پیچھے سوار تھا. پھر کیا ہوا؟ فاجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی زقا کی خیبرہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی گلیوں میں اپنی سواری کو ایڑی لگائی دوڑاتے ہوئے. یہ جو لفظ ہے نا فاجر، یعنی آپ نے تیزی سے دکھائی، یعنی سواری کو جیسے وہ ایڑ لگاتے ہیں نا، چل چل زور زور سے چلانا، وہ مطلب ہے. اور زقا کی خیبر، زقا کہتے ہیں گلیوں کو، اور خیبر کی گلیوں میں آپ نے اپنی سواری کو تیز سی سے دوڑایا. وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذِي فَخِذَ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میرا گھٹنا رسول اللہ کی ران مبارک سے چھو جاتا تھا. یعنی اب ظاہر ہے ساتھ ساتھ چل رہے تھے سارے، تو کہتے ہیں کہ میرا گھٹنا اللہ کے نبی کی ران کے ساتھ کھل جاتا تھا، چھو جاتا تھا. پھر کیا ہوا؟ ثم خسر الازار عن فخذه، پھر آپ نے ہٹا دی چادر اپنی ران سے، یعنی آپ نے اپنی ران سے کپڑا ہٹایا. حتی انی انظر الی بیاض فخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ مجھے آپ کی ران مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی. فلما دخل القرية قال، پھر جب آپ بستی میں داخل ہو گئے تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. خربت خیبر، خیبر برباد ہو گیا، ویران ہو گیا، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا نعرے میں مرد آباد، فلاں مرد آباد، کیونکہ جنگ کے لیے گئے جا رہے تھے تو اللہ کا نام بڑا کیا اور دشمن کے نام کے ساتھ بتا دیا کہ یہ تو آج ویران ہو جائے گا. اِنَّ اِذَا نَزَلْنَ بِسَاحِحَتِ قَوْمٍ، ہم جب کسی بھی قوم کے آنگن میں اترتے ہیں، فَسَا صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو بہت بری ہوتی ہے صبح ان کی جن کو ڈرایا گیا. قرآن پاک کی آیتوں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صحابہ کو جوش دلاتے ہوئے ایسے نعرے لگاتے تھے کہ جب ہم کسی دشمن کی زمین میں اترتے ہیں تو پھر ان کو وہ بچنے کا موقع نہیں ملتا. یعنی اللہ کا نبی جب کہیں چلا جائے تو پھر وہاں مدد اسی کی ہوگی. اور ساتھ ہی قالہا ثلاثن، آپ نے یہ بات تین بار فرمائی، یعنی ایسی بات کر کے فرمائی تین بار. قالا، حضرت انس کہتے ہیں، وخرج القوم الى اعمالهم، کہتے ہیں کہ بستی کے لوگ اپنے اپنے کام کے لیے نکلے، اعمال عمل سے، یعنی کسان تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، تو وہ سارے جو تھے وہ اپنی اپنی جگہ سے نکل گئے. فقالوا، پھر وہ بولے، محمد والخمیس، یعنی جیشہ، جب انہوں نے اچانک آپ کو دیکھا تو کہا محمد اور ان کا جیش، یعنی ان کا لشکر آ پہنچا، یعنی ان کو حیرت ہوئی کہ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگئے. قالا، حضرت انس کہتے ہیں، فأصبناها عن وطن فجمع سبی فجا دحیتو، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے خیبر کو فتح کر لیا. اصبناها عنوا، ہا سے مراد یہاں خیبر ہے، یعنی کہ ہم نے خیبر کو فتح کر لیا جنگ کے ساتھ، یعنی وہاں لڑائی ہوئی دشمنوں کے ساتھ، تلواریں چلی اور اس کے بعد جو تھا وہ دشمن کو ہم نے پکڑ لیا. پھر کیا ہوا؟ یعنی خیبر کی طرف گئے اور وہاں جب دشمنوں سے ملے تو کہتے ہیں کہ جنگ ہوئی، اور جنگ ہوئی تھی. حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی اگر ان جنگوں کے حالات ہم پڑھیں تو ہمیں یقین نہیں آتا آج کہ یہ سب کیسے ہوتا تھا. یعنی یہ ایسی ناممکن چیزیں تھیں کہ جس کو اگر آج دیکھیں، اس ٹرپ میں نہیں، اس سے پچھلے ٹرپ میں موقع ملا تھا ہمیں مدینہ گرد و گرد، جو یہود کے کبھی یہود کے جو قلعے تھے نا، جو ان کی گڑیاں تھیں بنو قریظہ کی، اور وہ ہم نے دیکھی تھی، اور وہاں کھڑے ہو کے وہ ساری باتیں جو سیرت میں پڑی ہوتی ہیں نا، وہ زیادہ سمجھ آتی ہیں. پھر یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے. اور آپ آج بھی وہاں اگر کبھی جا کے دیکھیں نا، تو وہاں ایک پہاڑ بالکل جل گیا تھا، یعنی آگ لگی تھی اس پہاڑ میں ایک موقع میں، بالکل آج ایسے دیکھیں نا تو جیسے جلی ہوئی پتھروں کو اگر جلائیں تو ایسے چھوٹے چھوٹے اندر سوراخ ہیں. یعنی ان جگہوں کی یادگاریں اللہ نے قائم کی ہوئی ہیں. پھر وہاں ادھر گئے تو وہاں ایک جگہ پہ دور سے ایک پہاڑ تھا، یعنی اللہ کے نبی کی ایک پیشن گوئی تھی کہ ادھر آگ لگے گی اور ملک شام کے پاس وہ آگ لگے گی اور مدینہ والے لوگ یہاں سے دیکھیں گے، تو وہ پہاڑ بھی نظر آتا ہے. یعنی یہ وہاں ویسے تو آپ دیکھیں کہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اتنا مسلمانوں کو اگر ہسٹری نہ آتی ہو تو یقین کریں جو لوگ جاتے بھی ہیں زیارتیں کرنے ادھر ادھر، وہ ایسے ہی رک کے آ جاتے ہیں، تو ان کو اتنا انجوائے نہیں کرتے. لیکن یہ سب چیزیں، اب اس وقت ہم پڑھ تو حدیث رہے، لیکن اب جہاں جہاں یہ چیزیں آ رہی ہیں ان کو زیادہ کون انجوائے کرے گا؟ جس نے سیرت پڑھی ہوگی. تو یہی بات جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں نکلے, پھر ہم نے بس اب نہ ہان وطن, ہم نے وہاں تلواریں چلائی اور ہم جیت گئے. فجومیا سبیجو فجا دہیتو, پھر کہتے ہیں کہ سارے قیدی جمع ہو گئے, یعنی جو وہاں دشمن تھے ان کو قیدی بنا لیا گیا. اور اس کے بعد حضرت دہیا آئے. حضرت دہیا کی کیا خوبی ہے جی؟ بہت ہی امتحان ہے آج صاحب کے. دو باتیں ان کی, وہ تو اور تھے, وہ کون تھے, چلے یہ بھی اب آپ ہی بتائیں. کس صحابی کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی؟ میرا لے ایک سیرت کا کوئز کروا لیں آپ کا. کسی کو نہیں یاد؟ مصعب بن عمیر. غزوہ بدر, غزوہ احد میں جب ان کا یا ان کی شہادت ہوئی تھی تو خبر پھیل گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو داہیہ قلبی کی کیا خوبی تھی؟ شاباش, خوبصورت صحابی تھے. کہتے عورتوں کی طرح ان کا گورا رنگ تھا. تو جبرائیل علیہ السلام جب انسانی روپ میں آتے تھے وہی لے کر, تو ان کی شکل میں آتے تھے. تو اس جنگ میں دیکھیں یہ لڑنے گئے. اب خوبصورت ہے تو گھر میں نہیں بیٹھ گئے, نازک اندام جنگوں میں گئے, لڑائیاں ہوئیں. تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت دہیہ آئے, پھر کیا ہوا؟ فقال یا نبی اللہ, کہنے لگے اللہ کے نبی, کیا کہا؟ آتینی جاریت من السبیجی, قیدیوں میں سے مجھے ایک لونڈی عطا فرما دے. قال, فرمایا, اذھب فخذ جاریہ, آپ نے فرمایا کہ یہ لونڈی لے جاؤ. فخذ صفیہ بنت حیی, انہوں نے حضرت صفیہ جو حیی کی بیٹی تھی ان کو لے لیا. فجا رجل الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال, پھر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے, یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی, آتیت دحیت صفیت بنت حنی, کیا آپ نے دے دیا ہے دحیہ کو صفیہ بنت حنی, جو کہ سیدت قریظت و النظیر, جو قریظہ قبیلے اور نظیر کی سردار ہے, یعنی یہ حوی بن اختب کی بیٹی تھی. تو کہنے لگے کہ آپ نے سردار کی بیٹی ایک عام صحابی کو دے دی, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. لا تصلح الا لکا, نہیں وہ سوٹ کرتی مگر آپ کو, یعنی آپ بھی سردار ہیں وہ بھی سردار ہیں, تو لہٰذا آپ ایک عام صحابی کو نہ دیں بلکہ آپ رکھ لیں. اور یہ جو موضوع ہے لونڈیوں کا, قرآن میں آپ اس کو بار بار سمجھ چکے ہیں الحمدللہ, کہ جب جنگیں ہوتی تھی تو دشمن کا سب کچھ مسلمانوں کو مل جاتا تھا, خدا نہ خواستہ اگر مسلمان جنگ ہارتے تو ان کا سب کچھ ادھر چلا جاتا تھا. تو اب چیزیں تو سامان اسلحے کی صورت میں جو ہی اس کو تو سنبھال لیا, استعمال کر لیا, انسانوں کا کیا کیا جائے, کھانا بھی ہے پینا بھی ہے ان کی ضروریات بھی ہے. ایک صورت کیا, ان کو قتل کر دیا جائے, جو کہ پہلے سے ہوتا تھا. اللہ کے نبی نے اس کو نہیں پسند کیا. جو مرد آتے تھے ان کو غلام بنایا جاتا تھا, پھر ان سے بیکار لی جاتی تھی. اللہ کے نبی نے آہستہ آہستہ ایسے قوانین مرتب کیے کہ جس کے بعد آہستہ آہستہ غلامی ختم ہو گئی. صحابہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے, اور جن کے پاس غلام آتے تھے ان کو وہ اچھا کھانا کھلاتے تھے. خود کہتے ہم کھجور کھاتے تھے جو مدینہ میں سستی ملتی تھی, اور اپنے غلاموں کو روٹی کھلاتے تھے. اب رہ گئی بات جو عورتیں آتی تھیں, دشمن اپنے ساتھ عورتیں لے آتے تھے تاکہ ذرا مسلمانوں کو غیر دلائیں, اور ناچتے گاتے اور اسلام کے خلاف نکلتی تھی وہ عورتیں. اب سوال پیدا ہوتے ہیں ان عورتوں کا کیا کیا جائے. ایک صورت ان کو واپس بھیج دیا جائے کفار میں, تو وہ تو پھر اور ہی زیادہ فتنہ پھیلے گا کیونکہ اسلام اور کفر کی جنگ چل رہی ہے. اب ان کو ساتھ لے آئے, اب کیا کیا جائے, ان سب کو بیٹیاں بنا دیا جائے کہ یہ امت مسلمہ کی بیٹیاں ہیں, ان کی شادی نہ ہو بیاہ نہ ہو, یہ بھی درست نہیں ہے. کہا جائے اچھا بھائی تمہاری بیٹی کی صورت ہے, اس کو اپنے گھر لے جاؤ بیٹی بناؤ. ان ساری چیزوں کا بیچ کا حل کیا تھا کہ جس طرح ان عورتوں کو سروائیول چاہیے تھا, گھر چاہیے تھا, پروٹیکشن چاہیے تھی, اسی طرح ان کے جسمانی حقوق بھی تھے. تو جس طرح شادی میں ایک باپ اپنی بیٹی کا کیا کرتا ہے, آپ دیکھیں نکاح کیا, چند بول تو بیٹی ان کی ہو گئی. وہ مرد جو آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا, وہ اس کے ساتھ آپ کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جائے, آپ نہیں روک سکتے. ایسے ہی ہے نا, نکاح کیا ہے, چند بول ہے نا. باپ اپنی بیٹی چند بولوں کے ساتھ کسی غیر کو دیتا ہے تو اس کو نکاح کہتے ہیں. اسی طرح امیر لشکر یعنی جو مسلمانوں کا حاکم ہے, وہ کسی دشمنوں کی طرف سے آئی ہوئی عورت کو اپنی مرضی سے کسی ایک صحابی یا ایک مجاہد کو دیتا ہے تو وہ ایک قسم کی دوسری نکاح کی صورت ہے. پھر سوال ہے, پھر اس کو نکاح ہی کہہ دیں, لونڈی کیوں کہتے ہیں, یا اس میں یعنی سلیو گرلز کے, تو جو آپ کے گھر میں ایک آزاد مسلمان عورت آپ کی بیوی بنی ہے اس کا حق زیادہ ہے. یہ عورت آئی تو اسلام کی دشمنی میں تھی نا. تو یہ سارے اس کے پیچھے لمبی باتیں ہیں, اس لیے کبھی ان لفظوں کو سن کر پریشان نہ. اور یاد رکھیں یہ اسلام نے نہیں شروع کی, اسلام نے ختم کی ہے. آج کہیں لونڈیزم نہیں ہے, آج کہیں غلامی نہیں, یہ کس نے ختم کیا, یہ اسلام نے ختم کیا. تو یہ سب پیچھے سے چل رہا تھا. تو لہٰذا حضرت صفیہ جو کہ جنگ ہارے لوگ, تو وہ صفیہ بھی قیدیوں میں آ گئیں. تو ایک صحابی نے احساس دلایا کہ ظاہر ہے جو بھی ہے, اور دیکھیے اس میں انہوں نے حضرت صفیہ کی رعایت کی ہے نا, کہ ایک اچھے گھر کی آئی ہوئی ہے. پتہ نہیں بیچارہ صحابی غریب ہو, کھائے پیئے نہیں, کیا کرے, اس کو کوئی عزت نہ مل سکے, تو اس عزت کی بات ہے, آپ اس کو لے لیں. اللہ کے نبی نے کہا قال ادھو بھی, جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی مشورہ سنتے بھی تھے اور مان بھی لیتے تھے جب ٹھیک ہوتا تھا. فجا بھی, پس جب ان کو لے آئے. فلما نظر الیہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا, یہاں پتہ چل رہا ہے اس سے پہلے دیکھا بھی نہیں تھا. قال فرمایا خذ جاریتا من سبھی غیرہا, کہا تم لونڈیوں میں قیدیوں میں سے کوئی اور لونڈی لے لو. قال فرمایا فاتقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتزوجہا, پھر اللہ کے نبی نے ان کو لیا, آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا. یعنی آپ نے ان کی عزت پہ اور ان کی انا پہ چوٹ نہیں آنے دی, بلکہ ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا. وجال صداقہا اعتقہا, کہا ان کا مہر, یہ جو صداقہ ہے نا قرآن میں کیسے آیا لفظ, سورت نساء میں, عورتوں کو دے دو ان کے صدقاتی ہننا, حق مہر کو کہتے ہیں. دیکھیے صدقہ کا لفظ قرآن میں آتا ہے, عورت کا حق مہر. ہم کہتے ہیں اچھا جی یہ صدقہ ہے, صدقہ دال پہ جزم کر دیں گے نا تو صدقہ ہے, چیریٹی. لیکن صدقہ دال کی پیش کے ساتھ کریں گے تو حق مہر. سوال پیدا ہوتا ہے کہ حق مہر کو صدقہ ہا کیوں کہتے ہیں, یہاں صدقہ ہا کیوں کہ, تو صدق سے سچائی. ایک مرد کا اپنی بیوی سے سچا ہونا, سنسیئر ہونا اور سیریس ہونا ہے حق مہر. پھر بول دیتی ہوں حق مہر کیا ہے, ایک مرد کی طرف سے ٹوکن ہے اس بات کا کہ میں اس لڑکی کو بساؤں گا. یہ صرف لو میرج نہیں ہے, یہ صرف پیپر میرج نہیں ہے, یہ ٹائم باؤنڈ میرج نہیں ہے, 3 ماہ کی نہیں, بلکہ مرد کہتا ہے کہ میں اس کے معاملے میں سچا ہوں کہ میں اس کو ہمیشہ کی نیت سے بسا رہا ہوں. بات واضح. تو یہ قسم کی عورت کی آنر ہے. تو اللہ کے نبی نے حضرت صفیہ کا حق مہر جو تھا وہ کیا رکھا, ان کی آزادی کو رکھ دیا کہ آپ کی آزادی ہی بہت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آزادی کیسے حق مہر بنتی ہے, تو آپ دیکھیے کہ بکتے تھے اس دور میں لونڈیاں اور غلام, ٹھیک ہے. اب 10,000 کا ایک غلام بکتا ہے یا ایک لونڈی 10,000 کی بکتی ہے, تو آپ نے وہ آزاد 10,000 نہیں دیے, لیے آزاد کیا اور اس آزادی کو ان کا حق مہر بنا دیا. یہ مراد ہے اس سے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا کانا, جب تھے وہ بت طریقی راستے میں, یعنی ابھی آپ راستے میں ہی تھے واپسی کے, یعنی مدینہ جا رہے تھے. جہزتھا لہو ام سلیم, تو تیار کیا گیا ان کے لیے ام سلیم کو. فحدتھا لہو من اللیلی, پھر اس کے بعد یعنی آپ نے وہاں سے نکاح کیا, اور حضرت صفیہ جو آپ کے لیے راستہ کر کے رات کو آپ کے پاس بھیجا گیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دلہا کی حیثیت میں ان کے پاس گئے. مراد ہے کہ جنگ کے واپسی پہ راستے میں شادی بھی ہو گئی. ہم ہوتے تو ابھی تو بات ہی نہ پکی ہوئی ہوتی, شادی کہاں ہونی تھی, ہم نے اتنی مشکل کر دی شادیاں. کہا نہیں, فاخدت ہم لہو من اللیل, رات کو آپ ان کے پاس گئے ایک دلہا کی حیثیت میں. فس بہ نبی, پھر صبح کی اللہ کے نبی نے عروسن دلہا کی صورت میں. فقال فرمایا من کان عندہ شیئن, پھر جس کے پاس ہو کوئی چیز, فل یجی بھی, پس لے آئے اس کو. کیا کرنا تھا, ولیمہ کرنا تھا, تو کیا کریں, صبح اٹھے اللہ کے نبی کے پاس کیا ہوگا, سفر میں کیا ہوتا ہے, کسی کے پاس بچے ہوئے بسکٹ ہوتے ہیں, کسی کے پاس کوئی کھجوریں بچی ہوتی ہیں. سفروں میں ایسے ہی ہوتا ہے نا, جب آپ ٹرانزٹ ہوتے ہیں کسی ایک شہر سے ملک سے دوسرے میں, 2-3 گھنٹے کا سٹاپ ہے, تو کیا کرتے ہیں. مجھے یاد آ گیا کہ ہمیں تو بڑا اچھا اللہ نے دلوا دیا تھا, ایک بیچ میں ساتھی ایسے, جب ہم یہاں سے جا رہے تھے عمرے کے لیے, تو جب لبنان میں ہم رکے تو 3 گھنٹے کا سٹاپ تھا. اب عادت بھی نہیں ہے زیادہ ایئرپورٹس پہ لینے کی, کھانے کی کرنسی چینج ہوتی ہے, اور ویسے بھی جہاز میں اتنی دیر بیٹھ کے کھا پی کے تھکے ہوتے ہیں. تو لیکن ہمیں ایک ایسی سسٹر مل گئیں اتر, جو اسی لاؤنج میں تھی جو وہاں سے واپس لندن آ رہی تھی, ان کے ساتھ 2-3 بیٹے تھے ان کے, بڑی اچھی فیملی تھی. خیر قصہ مختصر کہ اس عورت کے ساتھ ہمارا ٹائم بھی اچھا گزرا, ہم نے ان سے کلاس بھی لی, اور پھر انہوں نے اپنے جو ان کے سنیکس بچے ہوئے تھے سب ہمیں دے دیے, اپنے ٹیلی فون کی سمز ہمیں دے دی, ہم نے وہی یوز کی. میں سوچتی تھی ان کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ اگلے عمرے میں ہماری جو سم تھی وہ انہی کی یوز ہوئی. तो ये मुस्लिम हुड है ना, फिर उन्होंने हमें इस तरह की जो जो चीजें उन्होंने हमें दी, हमने तो खरीदनी भी कोई नहीं थी, तो अल्लाह माले गनीमत दे देता जंगों में, इस तरह सहाबा को भी मिल जाता है। तो सुबह उठे अब आपके, हाय कितनी बेइज्जती की बात है, वलीमा करना है, लोगों से पूछ रहे हैं कोई कुछ है, किसी के पास कुछ है, कहा हाँ लाओ भाई लाओ। वह बस अता नितान फजाला रजलू यजीव बे तमरी वजाला रजलू यजीव बे समनी। अब देखिए जरा वलीमा किन चीजों का बनता है। कहते हैं कि आपने कहा जो कुछ है बोले, आपने चमड़े का एक दस्तरखान बिछा दिया, यानी आपने वहां बिछाया, कोई खजूरें ले आया, कोई घी ले आया, और एक सहाबी कहते हैं कि अनस कहते हैं कि सत्तू का भी जिक्र आता है, सत्तू आया, लोगों ने उसका मलीदा बनाया। अरब लोग क्या करते थे, सत्तू खजूरें घी को मिला के ना वो एक लेवी सी बना लेते होंगे, और वो सारी चीजें जब जमा हो गई, कोई कुछ ले आया। अब इसमें अगर आप बस लफ्ज देखे, बसत नितान, बसत बिछाया, नितान चमड़े का दस्तरखान, यानी जो टेबल क्लॉथ कह लीजिए। फजाला जजियो भी तमर, तमर कहते हैं खजूर को, फिर दूसरे बिस समन, समन कहते हैं घी को, और काला व अह सिबहू, और मैं गुमान करता हूँ इसको कद जकरा सवीक, सवीक कहते हैं सत्तू को। गज़वे सुवैक भी थी, एक मुसलमानों ने जो जंग लड़ी उसमें एक गज़वे सुवैक भी थी, क्योंकि दुश्मन उसमें बहुत सारे सत्तू छोड़ के भाग गए थे, तो सब मुसलमानों को माल गनीमत के तौर पर मिल गए थे। बहरहाल काला फरमाया फहासू हईसन, फिर उसका मलीदा बनाया, फकानत वलीमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये था रसूलुल्लाह का वलीमा। आप भी ये रेसिपी ले जाएं, ये मेन्यू ले जाएं, नहीं आएगा तो वो जिनको सिर्फ खाने के लिए आना है वो ना आए। आप देखिए कि कैसी बात है ना, बड़ी बात है। और आप देखिए इतनी तवील हदीस है, हालांकि इसमें मौजू क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान को खुला हुआ देख लिया था हजरत अनस ने। असल हदीस में जो उस अमल का नुक्ता या जो हमारे मौजू से मुतालिक था वो था, और हमने इसमें पूरी दावत वलीमा भी इंजॉय कर ली। हा? तो हदीस पढ़ने का यही मजा होता है कि इसके अंदर आपको इंसानी जिंदगी की बातें दिखती है ना। तो एक चीज तो आपको मिल ही रही है अल्लाह के हुक्म से, लेकिन आप उसमें फिर दूसरी चीजें भी ले लेते हैं। तो यहां आप देखिए कि हम सब अपने ऊपर सोचें कि उस दौर की जिंदगी कैसी थी और आज हमारी जिंदगियां कितनी मुश्किल है, क्यों मुश्किल हो गई हैं हमारी जिंदगियां। और बास दफा आप देखिए कि हम खुद अपने ऊपर इतना मुश्किल ले लेते हैं इन चीजों को, तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें अमल की तौफीक दे। जो बातें इस हिस्से में हुई, इस पे से कोई बात कहना सुनना चाहें तो मोस्ट वेलकम।
हमें रोजमर्रा जिंदगी में भी सादगी इख्तियार करनी चाहिए। जैसे मैं इसको पढ़ के ही सोच रही थी कि दावतें ही हम करते हैं ना, तो इतना ज्यादा मेन्यू को मुश्किल बनाया होता है, तो उसको भी मैं ये सोच रही हूँ कि आइंदा मैं उसमें सादगी इख्तियार करूंगी।
ये शाबाश, बहुत अच्छी बात आपने कही कि सादगी। और आप देखिए एक लाइवलीनेस दिखती है, कोई गिले नहीं, कोई शिकवे नहीं, भोले लोग थे, मिल गया तो खा लिया, ना मिला तो ना खाया, कुछ भी नहीं। और मुझे तो नबी सल्लम का जो किरदार दिखता है, कितने जॉली, कितने रिलैक्सिंग। हमारे जहन में ये आता है कि हर वक्त डंडे के जोर पे ये करो ये नहीं करो, बहुत ज्यादा गुस्से वाले और बहुत लोगों के ऊपर रोब डालने वाले, कुछ भी तो नहीं। मुझे जो हदीस पढ़ने के बाद यकीन करे फीलिंग मिलती है कि एक अच्छा लीडर और एक दाई दीन वो कैसा होना चाहिए। वक्त, हर वक्त का एक अपना तकाजा होता है। आप जब देखें मस्जिद नबी में खुतबा दे रहे थे तो अल्लाह के नबी की कैफियत बिल्कुल बदल जाती है। अब सफर में, जंगों में, हजरत अनस जो गुलाम है, आप उनकी, आपकी रान को उनको छू भी रहे, इट्स ओके। ये जो आज हमने शख्सियत परस्ती के जाल बनाकर बुजुर्गों और उनकी गद्दी नशीनी और उनके साथ बहुत ही एक तकद्दस का तरीका इख्तियार कर लिया ना, वो भी दुरुस्त नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें इससे बचने की तौफीक दे। अभी इसके लिए, आज के लिए इतना काफी है ये वाला सेशन। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين